الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر آج ہم سورہ انعام کی یہ والی آیات جو بھی تلاوت کی گئی، یعنی آیات نمبر 90 سے لے کر کے 94 تک، لمبی لمبی یہ آیات ہیں، اور ان کا پھر آج ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر جیسی ترتیب ہے آگے خلاصہ تفسیر اور پھر معارف و مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سورہ انعام کی ان آیات میں جو بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان میں پیچھے جو ہے ہم نے پڑھ کے مکمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کا واقعہ جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور اس سے کچھ باتیں ہم نے سمجھنے کی، اپنے احوال کے مطابق کوشش کری. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کے اخوان میں سے تھے، یا ان کے آباؤ اجداد میں سے تھے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی اور انہوں نے جو ہے وہ نیکی کو اختیار کیا، اور ہم نے ان کو بہترین جزا دی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب بات ہم مکمل کر چکے ہیں. اب اللہ رب العزت آگے بات چلاتے ہیں، فرماتے ہیں اولائک، یہ وہ لوگ تھے، الذین، جن کو، وہ جن کو، الذین کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، وہ جن کو، اور اولائک کیا ہے، یہ اسم اشارہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ تھے، الذین ہدا اللہ، اللہ تعالی نے ہدایت دی. ہدا فعل ہے اور اللہ کا لفظ یہاں پر فاعل بن رہا ہے، تو اللہ تعالی نے ہدایت دی. فبہداہم اقتدہ، بس ان کی جو ہدایت ہے نا، یعنی ان کا جو راستہ ہے، یہاں پر ہدایت کا ترجمہ جو ہے وہ راستے سے کیا، طریقہ، طریقہ بھی جو ہے وہ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طریق عربی میں، تو طریق لفظ بھی جو ہے وہ راستے کے لیے उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो बस उनका जो रास्ता है ना, इक्तदे, तुम उनकी इक्तदा करो, उसकी इक्तदा करो, उस रास्ते की इक्तदा करो, यानी उसी को फॉलो करो, उसी के पीछे चलो, उसी के ऊपर चलो, जो भी आप उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन उसी की इक्तदा करो। जैसे मुक्तदी जो होता है नमाज के अंदर, वो इमाम की इक्तदा करता है ना, उसको जैसे जैसे इमाम जो है वो अफाल करता है नमाज के, वैसे वैसे मुक्तदी भी अफाल करता है, तो मैं उनकी तो इसी को इक्तदा करना कहते हैं। ये लोग तो हिदायत के ऊपर थे, ठीक है, ये लोग तो सही रास्ते के ऊपर थे, तो इनकी इक्तदा करना तो कंप्लीटली सेंसिकल चीज है, कंप्लीटली अकल के मुताबिक भी है कि भाई जो हिदायत पर हो तो तुम उसकी इत्तबा करो, क्यों नहीं करते, ठीक है। लेकिन इमाम का दर्जा हमारे दीन के अंदर तो इतना ज्यादा है कि जिसको के ऊपर से इमाम बना दिया गया ना, ऊपर से का मतलब ये कि या तो जिसको अल्लाह ने इमाम बना दिया वो तो नबी हो गया, ठीक है, या वास्ते से अल्लाह ताला ने बराह रास्त नहीं बनाया लेकिन नबी ने किसी को इमाम बना दिया, ठीक है, तो अब सबके लिए लाजमी कि वो उसकी इक्तदा करें, जैसे नबियों ने, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को किसी मुहिम का, किसी जिहाद की मुहिम का सरबराह बना दिया, ठीक है, उसका लीडर बना दिया, अमीर बना दिया, ठीक है, तो अब चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको इमाम बना दिया, तो अब जो है ना वो बाकी सब के ऊपर वाजिब हो गया कि वो उसकी इक्तदा करें, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी यही मामला चलता है कि जब ऊपर से किसी को इमाम बना दिया जाता है, लीडर बना दिया जाता है, तो उसकी इत्तबा करनी होती, ठीक है, ये यानी ये इसी को डिसिप्लिन भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक, जमाती डिसिप्लिन भी इसको कहते हैं, और इसको हमारे दीन में इतना ज्यादा अहमियत दी गई, और ये है भी अहम बात, जब तो इसको अहमियत दी गई, ठीक है, कि इसका एक मजहर जो है वो नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरीके से दिखाया कि नमाज में जो इमाम होता है ना, तो उसकी इक्तदा करनी होती है, लेकिन अगर इमाम कोई गलती कर रहा हो, जैसे वो गलती से खड़ा हो गया, ठीक है, जैसे उसको बैठना चाहिए था लेकिन वो खड़ा हो गया, तो अब पीछे से मुक्तदी क्या करेंगे, वो उसको लुकमा देंगे, यानी सुबहान अल्लाह कह करके उनको बताएंगे कि भाई ये गलती हो गई है, सुबहान अल्लाह के लफ्ज से उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे क्यों गलती हुई है। अगर औरत होगी पीछे मुक्तदी, तो वो आवाज बनाएगी अपने हाथों से, एक हाथ को दूसरे हाथ में मार करके, ताकि इमाम को पता चल जाए कि उसने गलती करी। लेकिन अगर इमाम ने उस गलती को ठीक नहीं किया बल्कि जारी रखा उस गलती को, यानी खड़ा हो गया था गलती से, तो वो खड़ा ही रहा, अब मुक्तदी के लिए जायज नहीं है कि इमाम को अब वो फॉलो करना छोड़ दे और वो अपनी नमाज को ठीक कर ले, यानी जहां बैठना चाहिए था वहां वो बैठ जाए, भाई इमाम साहब खड़े हो गए तो क्या उनकी गलती है, वो खड़े हो गए, मैं तो बैठ जाऊं ना, क्योंकि अब तो बैठना चाहिए था, अब तो जो है वो तीसरी रकत मगरिब की जो है वो उसमें बैठना था, ये इमाम साहब जो है खड़े हो गए तो मैं क्यों उनको फॉलो करूं, मैं बैठ जाऊं, नहीं, शरीयत का उसूल क्या है कि नहीं, इमाम की गलती को भी फॉलो करना पड़ेगा, फिर इमाम अगर सजदा सहव वाली गलती थी तो वो सजदा सहव करेगा तो फिर वो नमाज ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर गलती ऐसी थी कि सजदा सहव करने से ठीक नहीं होती तो उस पूरी नमाज को दोहराना पड़ेगा, लेकिन इमाम की इक्तदा से हटने की इजाजत नहीं है, इमाम की इक्तदा से हट के अपनी नमाज अलग पढ़ने की इजाजत नहीं है। सोचें जरा, क्या ये किया है, ये तालीम दी जा रही है ना, ठीक है, कितना डिसिप्लिन अहम है इंसानों के लिए, जब ही इंसानों के बनाने वाले ने ऐसे जो है वो उसूल बनाए कि नमाज में इसकी ट्रेनिंग होती है, जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई सवाल लिखा कि सिर्फ एक इमाम की तकलीद ही जरूरी है जैसा गुज़श्ता दर्स में बताया गया, ऐसा क्यों, ये बात बच्चों को कैसे समझाई जाए, गुज़श्ता दर्स में जब ये बात हुई थी तो इसकी वजह भी बता दी थी, तो आपको शायद उस वक्त समझ में नहीं आई होगी, लेकिन किसी और को अगर समझ में आई तो वो उसकी वजह बता दें। या पहले से माशाल्लाह आप तो लोगों को काफी ये बात पता है कि क्यों एक इमाम की तकलीद क्यों, इसकी वजह बताई थी पिछली क्लास में, तो वो क्या थी? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफे, इमाम मालिक, इमाम अहमद इबन हम्बल, तो इनमें से किसी एक इमाम की तकलीद क्यों करनी है, चारों की क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह बताई थी, वो क्या बताई थी ये आपसे पूछ रहे हैं। मर्दों में जवाब आया है लेकिन वो सही जवाब नहीं है क्योंकि क्लास में ये नहीं बताया था, अदरवाइज वी विल बी फॉलोइंग आवर नफ्स। ये तो आप क्लास के बाहर की बात का जवाब दे रहे हैं, क्लास के अंदर क्या जवाब दिया था? नफ्स को फॉलो करते हैं, ये क्लास में तो मैंने कहा ही नहीं था नफ्स को फॉलो करते, या कहा भी था तो बहुत बाद में कहा था, लेकिन असल में ही नहीं कहा था, बल्कि असल में क्या कहा था कि आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको किस इमाम को फॉलो करना है, किस बेसिस पे, कौन आपको बताएगा कि कौन से वाले इमाम को फॉलो करना जो है वो आपके लिए सही है, आपके लिए फायदेमंद है? आपकी अपनी अकल बताएगी ना, आप अपने अकल से फैसला करेंगे ना, ठीक है? तो फिर आपका इमाम कौन हुआ, आपका इमाम कौन हुआ? आपकी अपनी अकल। तो क्या आपकी अकल जो है वो इतनी अकलमंद है कि वो आपको बता सके कि जी सुन्नत असल में क्या है, क्या फायदे की चीज है, क्या फायदे की चीज नहीं है? क्या आपकी अकल इतनी अकलमंद है कि वो आपको फायदे और नुकसान में फर्क बता सके? अगर अकलमंद है इतनी आपकी अकल तो फिर इमाम की जरूरत ही कोई नहीं, ना इमाम अबू हनीफा की जरूरत है, ना इमाम शाफी की जरूरत है आपको, क्योंकि आपकी अकल सबसे ज्यादा अकलमंद है। और हकीकत तो यह है कि अगर आपकी अकल खुद सब कुछ सही और गलत में फैसला करने की सलाहियत रखती है तो फिर तो आपको नबी की भी जरूरत नहीं है। इमाम अबू हनीफा को तो छोड़ दें, आपको तो नबी की भी जरूरत नहीं है, आपको तो वही की भी जरूरत नहीं है, आपको तो कुरान की भी जरूरत नहीं है, आपको तो हदीस की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी अकल ही काफी है तो कुरान हदीस की क्या जरूरत है फिर आपको? बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने अपनी अकल को फॉलो नहीं करना है, हमने तो जो हिदायत मिलती हैं, जो डायरेक्शन मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, जिनकी अकल हमसे ज्यादा बड़ी है, ज्यादा कामिल है, ठीक है? किसकी अकल ज्यादा कामिल होती है, अकल किस बुनियाद पर कामिल होती है, या अकल किस बुनियाद पर इस काबिल होती है कि उसको फॉलो किया जाए, उसकी बात मानी जाए, किस बुनियाद पर? जी ये भी जवाब दें, अकल किस बुनियाद पर इस काबिल बनती है कि उसको फॉलो किया जाए? आई एम की बुनियाद पर, ये तो आजकल की अकल है, ठीक है, आई एम मी माई सेल्फ एंड आई, ठीक है जी। इल्म की बुनियाद पर, इल्म, इल्म से जो है ना वो अकल मेच्योर होती है, इल्म से अकल जो है वो प्रोग्रेस करती है, इल्म से अकल जो है वो डिवेलप होती है, फिर वो इस काबिल होती है कि हाँ आप उसकी बात मानी जाए। तो आपके पास इल्म है, आपके पास इल्म है क्या? आपके पास अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जितना इल्म है, क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जितना इल्म है? उनको तो रहने दें। क्या आपके पास मुफ्ती तकी उस्मानी जितना इल्म है? क्या आपके पास पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी जितना इल्म है? क्या आपके पास जो है वो आज के दौर के इतने सारे और उलमा हैं? क्या आज के दौर के उलमा से भी ज्यादा आपके पास इल्म है? छोड़ दें आप मौलाना कासिम नानोतवी की बात नहीं करते, चलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं करते जरा, ठीक है, आज के दौर के उलमा से ज्यादा आपके पास इल्म है? तो आपकी अकल के पास तो इल्म ही नहीं है, तो आपकी अकल कैसे इस काबिल हो गई कि उसकी बुनियाद पे आप फैसला करें कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये बच्चों को इस तरह से समझाएं, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई, ठीक है? इसी बात को समझना है, बार बार रीप्ले करके रिकॉर्डिंग सुने। एक नोबेल प्राइज होल्डर था, ठीक है, बंदा तो वो ठीक नहीं था, जाहिर है वो तो ठीक बंदे नहीं होते, लेकिन बहरहाल तो हमारे हजरत ने उसका एक वाकया सुनाया। उसने कहा कि उससे लोगों ने पूछा कि आपको नोबेल प्राइज कैसे मिला, आपको नोबेल प्राइज कैसे मिला? तो कहता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, उस वजह से मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि मेहनती तो हर साइंस का तालिब इल्म होता है, ठीक है, ये हमारे हजरत ने वाकया सुनाया था एक दफा। उन्होंने कहा कि मेहनती तो हर तालिब इल्म होता है, आपने कौन सी एक नई बात कर दी जिसकी वजह से आपको नोबेल प्राइज मिल गया? उन्होंने कहा नहीं, मैं, उस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप बताएं ना, समझ भी नहीं आई बात कि आप कैसे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि आपको नोबेल प्राइज मिल गया। तो बहुत इसरार करने के बाद उस बंदे ने कहा कि मैंने एक दफा एक किताब पढ़ी केमिस्ट्री की, ठीक है, वो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा, फिर वो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने उसको तीसरी दफा पढ़ा, फिर मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने उसको चौथी दफा पढ़ा, हत्ता कि उस किताब को मैंने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हजरत ने अपने बयान में बात बताई थी कि उस बंदे ने कहा कि मैंने उस किताब को 60 दफा, 65 दफा शायद पढ़ा, 65 दफा, 65 मरतबा उसने उस किताब को पढ़ा, 65 मरतबा उस बंदे ने उस किताब को पढ़ा, ठीक है, कहते है, तब मेरे अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गई। ठीक है, तो हम तो अल्लाह के कुरान को समझने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते, उस बंदे ने केमिस्ट्री की किताब को समझने के लिए 65 मरतबा जो है किताब पढ़ी, नोबेल प्राइज उसको मिला इस वजह से मिला, जिस वजह से मिला, लेकिन बहरहाल उसका ख्याल था कि इतनी मेहनत करने की वजह से उसको ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो बात को हम नहीं समझ पाते तो हमें रिपीट करना चाहिए, अल इल्मु यजीदु बित्तकरार, इल्म तकरार से, रिपीटेशन से बढ़ता है। ठीक है, कुरान मजीद को समझने के लिए भी हमें रिपीटेशन की जरूरत है, एक मतलब हमें बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये बात तो आपके सवाल के मुताबिक हो गई। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमाते हैं, उलाइका ये वो लोग थे जिनको के अल्लाह ताला ने हिदायत दी, फबी हुदा हम इक्तदे, बस उनकी जो हिदायत है ना, यानी वो जिस रास्ते पे उस हिदायत के नतीजे में चले हैं, तुम उसकी इक्तदा करो, आप उसकी इक्तदा कीजिए। कुल कह दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे सवाल नहीं करता, ला नहीं, अस्अलु मैं सवाल करता, कुम तुमसे, मैं नहीं सवाल करता तुमसे, अलैहि इसके ऊपर, अजरन किसी अजर का सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कोई रिकॉम्पनसेशन नहीं मांगता मांगता कि मुझे तुम पैसे दोगे तब मैं तुम्हें हिदायत की बात बताऊंगा, तब मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊंगा, तब मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे नुकसान के बारे में बताऊंगा, मैं तुमसे कोई डिमांड्स नहीं कर रहा, मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, मेरा कोई जो है वो तनख्वाह नहीं है जो मैं तुमसे वसूल करूं इसके ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों को कह दीजिए, यानी ये जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी है ना, जिस हिदायत के ऊपर अल्लाह ताला ने फिर मुझे भी चलने का हुक्म दिया है, ये यहाँ पर देखें बीच में एक महजूफ इबारत है कि पहले बात हो रही थी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इसकी इब्तिदा कीजिए, और एकदम से जो है वो कि कह दीजिए इन लोगों से कि आप जो है ना वो इस हिदायत की लोगों को तालीम करने के ऊपर उनसे कोई अजर नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो कुरान मजीद में इस तरह से एक बात से बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो बात जाती है, बीच के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो फिर तफसीर के जरिए से समझ में आते हैं, जिसका इल्म अल्लाह ताला ने उन लोगों को अता फरमाया जो कि अपनी जिंदगी इसके ऊपर वक्फ कर देते हैं, इल्म हासिल करने के ऊपर वक्फ कर देते हैं, उनको फिर अल्लाह ताला जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इल्म देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो दरमियान में एक गैप बजाहिर नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इल्म वालों से फिर सीखना होता है और समझने की कोशिश करनी होती है, तब हमें बात समझ में आ जाती है, फिर हम भी इल्म वाले बन जाते हैं। इन हुआ इल्ला जिक्रा लिल आलमीन, इन यहाँ पे इन जो है ये नफी के लिए कि नहीं है, हुआ वो इल्ला सिवाय जिक्रा नसीहत, लिल आलमीन तमाम आलमीन के लिए नसीहत, यानी ये तो बा मुहावरा तर्जुमा किया कि ये तो महज नसीहत है जहान के लोगों के लिए, ठीक है, तमाम जहान के लोगों के लिए ये तो नसीहत है, यानी खैर ख्वाही है, ये जो कुरान मजीद नाजिल हुआ ना, ठीक है, ये जो हुदा हिदायत पीछे के अंबिया को मिली, और ये हिदायत जो इन नबी अलैहिस्सलाम को मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से खैर ख्वाही है। नसीहत का मतलब क्या बनता है उर्दू में, खैर ख्वाही, कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि बंदों को जो है वो दुनिया में भेजा और उसके बाद फिर छोड़ दिया कि नहीं भी अब तुम खुद ही अपना फैसला करो क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद ही डिटरमिन करो क्या चीज़ फायदे की है क्या चीज़ नुकसान की है, क्या चीज़ जो है वो जहर है और क्या चीज़ जो है वो तिरयाक है, क्या चीज़ दवा है और क्या चीज़ जो है वो तुम्हें बर्बाद कर देने वाली चीज़, नहीं ऐसे नहीं किया अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी। वरना अल्लाह ताला अगर ऐसा भी कर देते कि जाओ गो फिगर इट आउट ऑन योर ओन, खुद से जो है फिगर आउट करो क्या चीज़ फायदा क्या चीज़ नुकसान, तो अल्लाह ताला से कोई पूछ नहीं सकता था कि क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्या गलत काम कर दिया हमारे साथ, हमें बगैर हिदायत के भेज दिया, हमें हमें गोया कि आपने, जैसे हम अपने बच्चियों के साथ करते हैं, आपने हमें धक्का दे दिया रियल लाइफ के अंदर और हमें सिखाया ही नहीं कि हमें करना क्या चाहिए, जैसा कि हम अपनी औरतों के साथ जुल्म करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि नहीं कोई हमने तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, तुम्हें तुम्हारे पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया ताकि तुम कमा करके खुद खा खा सको, ताकि तुम शौहर पे बोझ ना बन सको, हमने तुम्हें खूब कमाना सिखाया, खूब खूब जो है वो करियर ओरिएंटेड बनाया, तुम्हें खूब जो है वो नौकरी करनी सिखाई, तुम्हें खूब जो है वो काम पैसे कमाना सिखाया ताकि तुम अपनी शौहर पे बोझ ना बन सको, खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, ठीक है? यानी बात समझ में आ रही है कि क्या बात हो रही है, ठीक है? कि हम अपने बच्चियों को धक्के दे देते हैं ससुराल के अंदर या शौहर के साथ शादी के अंदर धक्का दे देते हैं, अब कहते हैं अब खुद ही फिगर आउट करो तुम्हें क्या करना है, हमारा परवरदिगार ऐसा नहीं है जैसे हम हैं, ठीक है? हम जालिम हैं, हमारा परवरदिगार जालिम नहीं है, तो उसने खैर ख्वाही करी कि तुम्हें बगैर हिदायत के बगैर ट्रेनिंग के बगैर इल्म के तुम्हें दुनिया में धक्का नहीं दे दिया, ठीक है? बात समझ में आ गई, नहीं आई तो पूछ लीजिए, यह रिकॉर्डिंग सुनिएगा दोबारा से, इन हुआ इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, नहीं है ये सिवाय आलमीन के लिए नसीहत, ठीक है? ताकि आलमीन वालों को पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना, वमा कदरुल्लाह, लेकिन क्या है वमा कदरुल्लाह, नहीं कदर की इन्होंने अल्लाह की, अल्लाह की कदरदानी नहीं करी, अल्लाह ताला के इस नसीहत, अल्लाह ताला के इस खैर ख्वाही, अल्लाह ताला की इस जो है वो मोहब्बत जो इनके लिए थी, इन्होंने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया इसको, ठीक है? इसका हक अदा नहीं किया, मा कदरुल्लाह हक कदर ही, जैसे कि करना चाहिए था, जैसे कि अल्लाह ताला की कदर बनती थी, हक बनता था अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला को मानते कि हाँ वो हमारा मुहसिन है, ठीक है? और वो हमारा भला चाहता है, उसने हमें जो है वो बगैर यानी हमें अंधेरों में छोड़ नहीं दिया टामक टोइयां मारने के लिए और अपने खुद रास्ते खुद ही तलाश करने के लिए, बल्कि सब जो है वो साफ साफ हमें बयान कर दिया समझा दिया, लेकिन इन्होंने कदर नहीं करी। इज कालू, जब उन्होंने कहा मा अनजल अल्लाह अला बशर मिन शय, मॉडर्न एथियज्म, मॉडर्न एथियज्म वरना कोई मॉडर्न बात नहीं है, बहुत पुरानी घटिया किस्म की दफियानूसी किस्म का पुराना मसला है ये सारा का सारा, नफ्स परस्ती का यही मसला है, शैतान परस्ती का यही नतीजा होता है कि कहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ने तो हिदायत नाजिल ही नहीं करी, अल्लाह ताला ने तो हमें ऐसे धक्के दे करके भेज दिया दुनिया के अंदर और कोई हिदायतनामा ही नहीं दिया, कोई मैनुअल ही नहीं दिया साथ में, ठीक है ना? हमें एक कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन तो दे दी कि जाओ इस मशीन को चलाओ और इससे जो है ना वो अपना काम निकालो, लेकिन उस मशीन को चलाने का तरीका ही नहीं बताया, उस मशीन को जो है वो खराब होने के से बचाने के लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही नहीं दिया, हमें कोई तरीका ही नहीं बताया, हमें कोई साथ जो है वो सपोर्ट का जिसको कहते हैं सपोर्ट पर्सनल भेजते हैं ना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम लगाते हैं किसी कंपनी में जा करके किसी कंपनी वाले, ठीक है ना? IBM सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है, वो अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम जो जरा मुश्किल सा होता है वो अगर किसी को बेचती है ना तो फिर वो मैनुअल्स भी किताबें भी उसके साथ बेचती है कि भाई हाँ ये किताबें हैं इसके अंदर सब लिखा हुआ भी है, लेकिन साथ साथ जो है वो एक एक इंस्ट्रक्टर भी भेजती है कि ये इंस्ट्रक्टर तुम्हें पहले इन किताबों को पढ़ना सिखाएगा वरना तो तुम इन किताबों को पढ़ भी नहीं सकोगे, तो हमारा इंस्ट्रक्टर साथ जाएगा वो तुम्हें ट्रेनिंग देगा, बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं कंपनियों के अंदर भाई कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है और इनके मैनुअल्स को रीड कैसे करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसे ही किया, ठीक है? कि हमें ये जिंदगी अता करे, ये कायनात अता करे, ये दुनिया अता करे, ये कोई दुनिया का कंप्यूटर जो है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता जितने कि ये कायनात और ये दुनिया और ये हमारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने इसके साथ जो है वो मैनुअल्स भी भेजे यानी आसमानी किताबें और उनको समझाने के लिए अपने रसूल भी भेजे, कभी रसूलों के बगैर जो है वो कोई किताब नहीं भेजी, कभी रसूलों के बगैर कोई किताब नहीं भेजी, ठीक है, बल्कि एक एक किताब के साथ कई कई रसूल भेजे, एक एक किताब के साथ कई कई रसूल भेजे। साथ से मुराद ये कि एक रसूल लेकर के आए, फिर उसके बाद अगला रसूल आया, उसने मजीद उस किताब को समझाया, फिर अगले रसूल आए, फिर उन्होंने मजीद उस किताब को समझाया, फिर अगले, जैसे तौरात, राइट। तो तौरात जो है वो तो एक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आई थी ना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया बनी इसराइल आते गए वो सब उसी तौरात को जो है वो समझा समझा करके लोगों को बताते रहे, ठीक है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अल्लाह ने कोई हिदायतनामा भेजा ही नहीं, अल्लाह ताला ने कोई रसूल भी नहीं भेजा, ना कोई यूजर मैनुअल भेजा, ना कोई बुक भेजी, तो गोया क्या कह रहा है वो कि अल्लाह ताला ने तो खैर ख्वाही करी ही नहीं। तो ये कितना बड़ा झूठा इंसान है, और कितना बड़ा ये, यानी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसको कहते हैं ना वो एहसान फरामोश, एहसान फरामोश इंसान है। उर्दू में तो हम यही बात, यही लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए, कितना बड़ा एहसान फरामोश इंसान है जो कि ये बात कहे। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब इन्होंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने तो इंसान पर कोई चीज नाजर ही नहीं करी हिदायत के लिए, ऐसे ही भेज दिया, गोया हमें धक्के दे दिए इसके अंदर, तो मा कदर अल्लाह हक कदर, इन्होंने कदर नहीं करी अल्लाह ताला की जैसे कि करनी चाहिए थी। तो मतलब ये नहीं कि थोड़ी कदर करी लेकिन उतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी, बल्कि बिल्कुल भी कदर नहीं करी, कदर करनी चाहिए थी, हक तो ये था कि कदर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कदर नहीं करी, ठीक है। कुल कह दीजिए इनसे, पीछे भी सूरह अनाम की कई आयत हमने काफी अर्सा पहले से जो पढ़ रहे हैं, तो पीछे भी कुल 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 नबी अलैहिस्सलाम ताला कह रहे हैं, कह दीजिए इनसे, कह दीजिए इनसे, कह दीजिए इनसे, और यहाँ पर फिर से भी कुल का सिलसिला शुरू हो गया है। दरमियान में थोड़ा सा ये कुल का सिलसिला मौकूफ हुआ था थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन फिर कुल 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 शुरू हो गया कि आप इनसे कह दीजिए, आप इनसे कह दीजिए। तो फिर फरमा रहे हैं कुल कह दीजिए इनसे, मन अनजल अल किताब, किसने किताब, किसने नाजिल करी वो किताब, अल किताब वो किताब, अल्लदी जा बिही मूसा, के जिसको लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, यानी तौरात की बात हो रही है। तो तुम, यानी ये उनसे यहूदियों से बात हो रही है ना, जो मदीना मुनव्वरा में यहूदी आकर के बसे हुए थे इतने सालों से, कि आखिरी नबी आएंगे, आखिरी नबी आएंगे और हम उनकी इक्तदा करेंगे, लेकिन जब आखिरी नबी आए तो इनको अपनी चौधराहट जो है वो दांव पे लगती भी नजर आ गई कि भाई नहीं नहीं हम इनकी इक्तदा कैसे करें। बहाना ये बनाया कि ये तो बनी इसराइल में से है ही नहीं, ये तो बनी इस्माइल में से है, ये तो बनी इसराइल में से नहीं है, इस वजह से हम इनकी इक्तदा नहीं करेंगे, बहाना ये बनाया उन्होंने, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या थी कि ये सिर्फ वही अपने अकल की इब्तिदा करने वाले लोग थे, अपने नफ्स की इब्तिदा करने वाले लोग थे। ये नहीं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की इसलिए मुखालफत करते थे कि ये बनी इसराइल में से नहीं थे, बनी इस्माइल में से थे इस वजह से, नहीं, बल्कि जो बनी इसराइल में से थे उनकी कौन से ये इब्तिदा करते थे, उनकी कौन से ये इब्तिदा करते थे, यानी इनकी मेजोरिटी। हाँ, एक्सेप्शंस तो थी इनके दरमियान के, जो के अंबिया के इक्तदा करते थे, बहुत नेक लोग थे, बहुत जो है वो उन्होंने अल्लाह को राजी किया अपनी इबादतों और अपने मुजाहिदों के जरिए से, लेकिन जो ज्यादा अक्सरियत थी बनी इसराइल की, वो अपने जो बनी इसराइल वाले अंबिया थे उनकी भी इक्तदा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? नफ्स परस्ती की वजह से, अकल परस्ती की वजह से, यानी इल्म है नहीं, छोटी सी अकल है, उसी की जो है वो इबादत कर रहे हैं, अपनी अकल की इबादत कर रहे हैं। और यही बात आप जो बात कर रही थे ना शुरू में, जिन्होंने सवाल किया था कि बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चों को कैसे समझाएं, ये क्यों मुझसे, ये आपने पहली दफा सवाल नहीं किया कि बच्चों को कैसे समझाएं। जब कभी ये बात होती है कि एक इमाम की इक्तदा करनी है, तकरीबन हमेशा आगे से यही सवाल होता है, बच्चों को कैसे समझाएं, क्यों क्यों ऐसा होता है कि जब कभी एक इमाम को फॉलो करने की बात हो रही होती है, तो हमेशा आगे से पेरेंट जो होते हैं ना, उनको तो फिर भी वो मान लेते हैं बात को, लेकिन हमेशा ये सवाल करते हैं बच्चों को कैसे समझाएं, क्यों ऐसा क्यों है भाई, बच्चे, बच्चों को और कोई नहीं काम मिला, बच्चे तो क्रिकेट खेलने वाली, नऊज बिल्ला, फुटबॉल खेलने वाली उम्र है उनकी, उनकी उम्र जो है वो स्कूल में पढ़ने की उम्र है, उनकी उम्र जो है वो यानी खेल तमाशा करने की उम्र है, ये क्यों मसला हो गया, बच्चों को ये कहाँ से ये मसला हो गया कि इमाम अबू हनीफा को क्यों फॉलो करें, चारों को क्यों नहीं फॉलो करें, क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आगे से सवाल बच्चों के बारे में आता है कि बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चे क्यों नहीं इसके बारे में आपकी बात मानते हैं, याद या ये कहे कि जो मैनुअल भेजा है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। हाँ ये भी इसी की ही एक्सटेंशन है कि पहले एप्लीकेबल था लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है, ये भी उसी बात की एक्सटेंशन है। ठीक है, चले, मर्दों में तो जवाब आ गया, खवातीन में जवाब नहीं आया। कि जब भी हम ये बात करते हैं कि सिर्फ एक इमाम को फॉलो करना है, तो आगे से पेरेंट हमेशा ये क्यों कहता है कि बच्चों को ये बात कैसे समझाएं, ये क्यों नहीं कहता कि बूढ़ों को ये बात कैसे समझाएं, या ये क्यों नहीं कहता कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, हमेशा ये जवाब सवाल आता है बच्चों को कैसे समझाएं। जी, खुवान को नहीं समझ में आ रही बात, क्यों भाई? आपने कभी घर में कोशिश करी होगी तो आपको भी पता होगा कि आपने बच्चों को समझाने की कोशिश करी तो बच्चों ने आगे से कहा कि क्यों करें। बहुत आसान सा जवाब है, बच्चे अलग अलग तरीके देख कर कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ से देखते हैं अलग अलग तरीके, खुद क्लियर नहीं होता, इसलिए बच्चा खुद क्लियर नहीं होता, अलग अलग तरीके देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग देख कर के तरीके वो कंफ्यूज नहीं हो जाते। तालीमी निजाम की वजह से, क्योंकि स्कूल्स के अंदर जो है ना वो अकल परस्ती घोल के पिला दी जाती है, अकल परस्ती नफ्स परस्ती घोल के पिला दी जाती है कि बस तुम अपनी अकल को फॉलो करो, तुम अपनी जो है वो अच्छा, मजे की बात यह है कि मजे की बात यह है कि ये जो है ना अकल परस्ती घोल के जो पिलाते हैं, तो ये फिजिक्स में क्यों नहीं पिलाते, ये फिजिक्स में क्यों नहीं पिलाते, ये बायोलॉजी में क्यों नहीं पिलाते, ये केमिस्ट्री के मामले में क्यों नहीं पिलाते, ये क्यों नहीं कहते कि फिजिक्स में जो सारे तुमको हम लॉस पढ़ा रहे हैं तो तुम हमसे मत पढ़ो, तुम फिजिक्स के जो है ना वो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं उनसे मत उनको मत फॉलो करो, बल्कि तुम खुद डिटरमिन करो कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। केमिस्ट्री के अंदर तुम जो है वो कोई लीडिंग केमिस्ट साइंसदान जो था तुम उसको फॉलो ना करो, बल्कि खुद से डिटरमिन करो कि क्या चीज़ जो है वो केमिकल रिएक्शन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बायोलॉजी में क्यों नहीं बताते कि तुम जो है वो डॉक्टर्स और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करने के बजाय तुम अपनी अकल से फैसला करो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। सिर्फ दीन में क्यों बताते हैं ये वाली बात, स्कूलों के अंदर सिर्फ दीन के बारे में ये क्यों कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी और इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के जो है ना उनको फॉलो करने की बजाय जो है तुम अपनी अकल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सिर्फ दीन के बारे में ये क्यों कहते हैं? भाई अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ और इन सब के बारे में भी यही कहा करो कि भाई इनके जो इमाम हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो इमाम हैं तुम्हें किसी इमाम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही जो है वो डिटरमिन करो कि तुम्हें क्या करना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी एक सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी एक जो है वो मेथोडोलॉजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी एक जो है वो स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाओ। ठीक है, ये दीन के बारे में बात क्यों करते हैं? ठीक है, ये नहीं कि इल्म हासिल करो, जब तुम खुद जो है वो इमाम के दर्जे पर पहुंच जाओगे तब तुम जो है ये फैसला करना कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस वक्त तक तो तुम्हें किसी इमाम को फॉलो करना पड़ेगा ना, जब तक तुम्हारी अकल कम है तुम्हारा इल्म कम है, तो ये तमाशे चल रहे होते हैं स्कूलों के अंदर। ठीक है, एंड पेरेंट्स माइंड ऑल्सो, पेरेंट्स जब बच्चे थे तो उस वक्त उनका माइंड बन चुका था, अब जो है वो उनके स्कूलों के अंदर उनके बच्चों का माइंड बनाया जा रहा है। साइंस इज पोजिशन एज अ डेफिनेट साइंस एंड रिलीजन इज पोजिशन एज ए मैटर ऑफ ओपिनियन। एग्जैक्टली, साइंस को डेफिनेट साइंस, ये तो कतई इल्म है, ये तो जो साइंस के इमाम साहब ने कहा है उसी की बात माननी पड़ेगी, जबकि जो दीन है ये तुम्हारी जो है ना वो क्या कहते हैं ओपिनियन के ऊपर है, तुम्हारी जो ओपिनियन होगी तुम उसी के मुताबिक दीन को सही समझो दीन को गलत समझो, तुम्हारा अपना ओपिनियन होता है। साइंस लॉजिक्स पर है, दीन अकीदे पर है, नहीं ऐसा नहीं है। कि साइंस जो है वो पूरी की पूरी लॉजिक पर है और दीन जो है वो अकीदे पर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी जहालत है कि जिसकी वजह से हम ये समझते हैं। साइंस जो है वो भी अकीदे पर है, ठीक है, और दीन जो है वो भी लॉजिक पर है। साइंस अकीदे पर भी है और साइंस लॉजिक पर भी है, और दीन अकीदे पर भी है और दीन लॉजिक पर भी है। ये लॉजिक और अकीदा जो है ना, ये अलग अलग चीजें, ये ऐसे नहीं है कि बस एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ। साइंस में भी लॉजिक एंड अकीदा दोनों चलता है और दीन में भी लॉजिक एंड अकीदा दोनों चलता है, ठीक है। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता, ये कैसे हम समझते हैं साइंस लॉजिक पर है और दीन अकीदे पर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अब ये बड़ी लंबी चल जाएगी अगर इसके ऊपर हम शुरू हो गए तो। अच्छा, तो हाँ, बच्चे तो सलीमुल फितरत होने चाहिए थे। बात उन्होंने सही करी, मर्दों में बात बड़ी अच्छी हुई कि बच्चे तो सलीमुल फितरत होने चाहिए थे। सलीमुल फितरत क्या होता है कि भाई जिसको तुम अपना बड़ा कहते हो, माँ बाप हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे तुम जो है वो फायदा हासिल करते रहे हो, तो उनकी बात तुम्हें माननी चाहिए, है ना। ये सलीमुल फितरत बात नहीं है कि जिनसे तुम फायदा हासिल करते हो तो तुम्हें उनकी बात भी माननी चाहिए, जैसे माँ बाप, ठीक है, तो माँ बाप से तुमने इतने फायदे हासिल किए हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। इसको कहते हैं सलीमुल फितरत होना, ठीक है। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो इनकी जो सलीमुल फितरत पना जो होता है ना, उसको फिर यानी सलीम का उल्टा क्या होता है, मुतादात, उसको फिर सलीमुल फितरत रहने नहीं दिया जाता बच्चे को, फिर उसको फितरत के खिलाफ बनाया जा रहा होता है, ठीक है। तो अब जो है ना, फिर वो बड़ों की बात मानने के बजाय फिर वो उनकी बात मानता है जिनको वो जिन देखें अकीदा स्कूल में भी अकीदा बनाया जाता है। हम समझते हैं स्कूल में लॉजिक बताई जाती है, नहीं, स्कूल में अकीदा बनाया जाता है। वो अकीदतमंद हो जाते हैं उन तमाम बातों के जो कि उनको स्कूल में पढ़ाई और सिखाई जा रही होती है, वो अकीदतमंद बन जाते हैं। जैसे हम बन गए थे, हम भी तो उसी स्कूल सिस्टम से पढ़ के निकले हैं ना, और हमारे बल्कि अब्बू अम्मा भी उसी स्कूल सिस्टम से पढ़ के निकले थे, लॉर्ड मुकाले का बनाया हुआ स्कूल सिस्टम। तो भाई वहां पे जाकर के हम अकीदतमंद बन जाते हैं। अब वो जो कह रहे होते हैं ना, हम उसको आमन्ना व सद्दकना कह रहे होते हैं, आमन्ना व सद्दकना, तो ये अकीदतमंदी है ना। हम कौन सा हर चीज को क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहां पर स्कूल में, कौन से जाकर के आप हर चीज को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कौन सा अपनी अकल से जो है वो हर चीज को सही और गलत का जो है फैसला कर रहे होते हैं। साइंस की किताब के अंदर हो, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ की किताब हो, या इवन हिस्ट्री की किताब हो, या इवन लिटरेचर की किताब हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहां पर बैठ के, अकीदतमंदी हो रही होती है। हाँ जी, लिखने वाला जो है वो बड़ा था तो हमें उसकी बात माननी है, हमें कोई खास क्वेश्चन वेश्चन नहीं करने। एक आध बंदा अगर बच्चा कोई क्वेश्चन करे, उसको जो है वो नर्ड कह करके जो है वैसे भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाकी कोई क्वेश्चन ही नहीं करता कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो ये साइंस और ये जो है ना आपकी दुनियावी तालीम, ये अकीदतमंदी की बुनियाद पर चलती है। पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी लॉजिक्स भी बता देते हैं आपको, छोटी मोटी सी लॉजिक्स भी बता देते हैं विद इन कंट्रोल, ठीक है। उसी तरह दीन के अंदर भी यही मामला होता है कि भाई दीन के अंदर भी जो है वो अकीदतमंदी, किसी बुनियाद पर अकीदतमंदी बनती है, उसकी बुनियाद पर जो है वो आप उन बातों को भी मान लेते हैं जिनको कि आप अपनी लॉजिक से प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी लॉजिक भी कम होती है, इल्म कम होता है, तो इस वजह से आपको ट्रस्ट करना पड़ता है किसी बड़े के ऊपर। बड़े के लिए जब अकीदतमंदी बनती है, तब आप उसकी उन बातों को मान लेते हैं जो कि आपके लॉजिक में नहीं आ रही है। बिल्कुल यही मामला स्कूल के अंदर भी होता है, बिल्कुल यही मामला स्कूल में भी होता है, बिल्कुल यही मामला दीन में भी होता है। फर्क यह है कि अब हमारा दीन जो है वो स्कूल है, ठीक है, और बाकी जो कुरान हदीस है ये तो गुजारे की चीज है, बस बस। ये तो एक रिचुअलिस्टिक किस्म की एक जो है वो बाप दादा को करते हुए एक काम देखा था तो वो हम भी कर लेते हैं, इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, कोई खास इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगी के साथ, ठीक है। द साइंस इज टॉट विद फुल बिलीव इन द अकीदा ऑफ एम्पिरिकल मेथड्स, बिल्कुल सही। साइंस जो वो पढ़ाते हैं वो कंप्लीट डेफिनेट, जैसे लिखा था ना, डेफिनेट नॉलेज के तौर पे पढ़ाते हैं, फुल अकीदा इन द एम्पिरिकल मेथड्स, और मेथड्स भी कौन से जो उन्होंने बना दिया, जो उन्होंने सिखा दिया, सारा मेथड को थोड़ी बताते हैं, ठीक है, जो बता दिया बच्चे ने मान लिया, आमन्ना व सद्दक़ना। तो स्कूल के अंदर जाकर के ईमान लेकर के आ रहा होता है बच्चा आपका या बच्ची आपकी, या आप खुद भी ईमान लेकर के आए थे, मैं भी ईमान लेकर के आया था जब मैं स्कूल में जाता था। ठीक है। तो बहरहाल, तो ये जो उन्होंने कहा ना कि मन अंजलल किताब अल्लदी जा बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नासे, कि किसने उतारी वो किताब जो मूसा अलैहि सलाम लेकर के आए थे, नूरन व हुदन, कैसी कैसी उतारी थी कि वो नूर थी यानी लाइट थी, जिस लाइट में जो है वो फिर बात समझ में आती है, अंधेरे में बात समझ में नहीं आती। तो नूर यानी एक रूहानी नूर था, एक एक स्पिरिचुअल नूर था वो, कि जिसमें एक इंसान को सही गलत की तमीज आती है। ये किताब इस नूर के साथ उतारी थी, किसने उतारी थी, जिसको तुम भी कहते हो अल्लाह, उसने उतारी थी ना। वह हुदन लिन्नासी, और वो हिदायत नामा था यानी रास्ता दिखाने वाली चीज थी इंसानों के लिए। तजअलूनहु कराटीसा, कि जिसको तुमने बना लिया, जाला या जालू का मतलब होता है बनाना यानी कर लेना किसी चीज को, कुछ कुछ कर लेना, कुछ बना लेना कुछ। तो तजअलूनहु, तुमने उसको बना लिया, कराटीस, किरतास उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं वरक को, पेज को, तो कराटीस जो है उसकी जमा है, तुमने उसको पेजेस की फॉर्म में रखा, कंपाइल करके बुक नहीं बनाई। इतना बड़ा पॉइंट है यहाँ पर अल्लाह अकबर कबीरा, कि तुमने उनको पेज पेज की फॉर्म के अंदर रखा यानी अनकंपाइल्ड फॉर्म में रखा। तो बदूनहा, कि तुमने दिखाया उसको यानी करातीस को तुमने दिखाया, वह तुखफूना कसीरा, और तुमने उन कसीर पेजेस को तुमने खफी कर लिया, तुमने छुपा लिया। ठीक है, अगर एक बुक फॉर्म में कर देते तो क्या होता, पूरी बुक जैसे कुरान मजीद, माशाल्लाह इस उम्मत ने, नबी अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत प्रिपेयर करी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की हिदायत से, जो उम्मत बनाई उम्मत है, तो उसने क्या किया, उस उम्मत ने फौरन कंपाइल किया कुरान मजीद को, एक बुक फॉर्म में कंपाइल किया। हालांकि सहाबा के जमाने में कुरान मजीद जो है वो किसी के पास सफात की शक्ल में था, किसी के पास कुछ सफ़े होते थे, किसी के पास जो है वो हड्डी पर लिखा हुआ है, किसी के पास जो है वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ है, किसी के पास जो है पत्ते के ऊपर लिखा हुआ है, किसी के पास किसी और शक्ल में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसी तौफीक अता फरमाई उस उम्मत को, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के दौर के अंदर पूरा एक बुक फॉर्म के अंदर ये कंपाइल हो गई, फिर उससे जो है वो कॉपियां बनाई जाती थी बुक फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में। तो अब ये नहीं हो सकता कि कुछ सफ़े किसी ने छुपा के रखी और कुछ जो है वो किसी को दिखा दिए, कुछ छुपा लिए किसी को दिखा दिए। ठीक है, तो बनी इसराइल के जो उलमा थे अल्लाह ताला ने उनको ये वाली तौफीक नहीं दी। ठीक है, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, और वो क्यों नहीं दी भाई, अच्छी नेकी की तौफीक क्यों नहीं दी, क्योंकि गड़बड़ करते थे, अल्लाह ताला तौफीक छीन लेते हैं। जो गड़बड़ करता है ना, जिसकी नीयत ही खराब होती है, जिसके की जो है ना वो तमाशे करना है, उसकी नीयत होती है, अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक ही नहीं देते। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने वरक वरक रखा उसको, कुछ को दिखाते थे कुछ को छुपाते थे। वउल्लिमतुम मा लम तअलमू, और तुमको सिखला दी, उल्लिमतुम तुम्हें इल्म दे दिया, मा लम तअलमू जिनको तुम नहीं जानते थे, जिन बातों को तुम नहीं जानते थे उनका तुम्हें इल्म दे दिया। अंतुम वला आबाकुम, ना तुम जानते थे, अंतुम ना तुम जानते थे, वला आबाकुम ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, जिन बातों को उनका इल्म अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया। ठीक है, कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह सुम्मा, ये जो मन अंजला था ना कि किसने नाजिल किया, तो इसका जवाब यहाँ पर उन्होंने, तो उनको तो चुप लग जाती थी ना, वो कहाँ से जो है वो सही सच्चे सच बात का जवाब देते, सच जवाब देते। तो फरमा दिया, कह दीजिए अल्लाह, अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, हालांकि उनको भी पता था, वो भी मानते थे, लेकिन जब होता है ना व्हेन यू आर कॉर्नर्ड, तो अब आप जो है ना वो हकीकत का इकरार नहीं करना चाहते अपनी जुबान से। अगर आपके दिल में मैल हो, दिल में कुचैल हो, तो अब आप हकीकत का इकरार नहीं करते, तो आपको चुप लग जाती है। ठीक है, तो अब जो है ना वो सवाल करने वालों को खुद ही जवाब देना पड़ जाता है। तो जवाब अल्लाह ताला ने कहा, कह दीजिए इनसे अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने नाजिल किया था उस किताब को जो के मूसा लेकर के आए थे। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, फिर छोड़ दीजिए उनको अपनी खराफात में खेलते रहें, यलअबून खेलना कूदना, ठीक है। दरहम, तो दरहम जो है वो पीछे भी जो है वो दर का लफ्ज गुजरा था, कि छोड़ दीजिए उन लोगों को जो के जिन्होंने अपने दीन को लहव और लाभ बनाया हुआ है, इस हाल में कि उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला हुआ है, उनको आप छोड़ दीजिए। तो वहां पे जर के लफ्ज की बात हुई थी, तफसीर में लिखा था हजरत ने कि जर का मतलब ये होता है कि आप उनको छोड़ दीजिए, इस तरह से नहीं कि एज इफ यू आर वेरी प्लीज विद देम, बल्कि इस हालत में कि आप उनसे बेजार हैं, ठीक है। ये इनकी जो हरकतें हैं ना, आप उन हरकतों से बेजार हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद देम। जैसे हम किसी को छोड़ करके आते हैं, हमारा कोई दोस्त यार होता है, हम उसको छोड़ करके कहीं जाते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ के जाते हैं, तो हम उनसे बेजार तो नहीं होते ना, कि रिश्तेदारों को छोड़ दिया बेजारी की हालत में, नहीं, मोहब्बत की हालत में छोड़ के आते हैं किसी को और याद करते रहते हैं उनको। ऐसे नहीं छोड़िए इन लोगों को, बल्कि ऐसे छोड़िए कि आप उनसे खुश और राजी नहीं है, नाराजगी के साथ छोड़िए उनको, ठीक है। तो छोड़ दीजिए लोगों को किस हाल में, फी खौज़िहिम, यानी इनका ये हाल है कि ये अपने खेल कूद के अंदर डूबे हुए हैं, खावा यखूदू, पीछे भी पढ़ा था ना जो जो पीछे आया थी कुरान मजीद में, वह इदारा इतना यखूदून फी आयातिना, जब आप उन लोगों को देखें जो कि हमारी आयात के मामले में झगड़ते हैं, वहां हमने तफसीर पढ़ी थी कि खावा यखूदू या खौगुन का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज में डूब जाना। तो ये लाबून में डूबे हुए हैं ये लोग, अपने खेल कूद के अंदर, अपने तमाशों के अंदर, अपने मेले मेलों के अंदर जो है ये डूबे हुए हैं, ठीक है। दुनिया की जिंदगी ने इनको बिल्कुल अल्लाह ताला से गाफिल कर दिया, इनको इस हालत में नागवारी के साथ, इन लोगों को इस हालत में आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जब बंदा अगले बंदे को दलाइल के साथ बात समझाता है, खैर ख्वाही के साथ उससे बात करता है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता ना, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको, उसके हाल पे उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। वहादा किताबुन अनज़लनाहू, और ये कुरान किताब है, अनज़लनाहू, हमने इसको नाजिल किया, मुबारकुन, बरकत वाली, ठीक है, हमने इसको नाजिल किया, उसके बाद फिर मुबारकुन, ये बरकत वाली है, मुसद्दिकु, तस्दीक करने वाली है, वेरीफाई करने वाली है, अल्लदी बैना यदैही, उस चीज की जो के तुम्हारे सामने है, जो उससे पहले है, बैना यदैही, जो उससे पहले गुजरी है। यहाँ पे बा मुहावरा तर्जुमा से कि तस्दीक किन चीजों की करती है, उन किताबों की जो कि उससे पहले गुजरी हैं, यानी बैन यदई ही का जो मुहावरा है उर्दू के अरबी के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों हाथों के दरमियान, तो इंसान के जो हाथ होते हैं ना दोनों, ये हमेशा आगे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं, ऐसे कोई बनमानस की तरह से नहीं हाथ होते कि वो पीछे की तरफ निकले, बल्कि आगे की तरफ निकले होते हैं हमारे हाथ, शोल्डर्स बनाए अल्लाह ताला ने इस तरीके से। तो बैन यदई ही, हाथों के दरमियान, तो हाथों के दरमियान जो चीज होती है वो इंसान के फ्रंट में होती है, इंसान के सामने होती है, लेकिन यहाँ पर इंसान के सामने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर जो है वो किताबें, किताबों की बात हो रही है ना, तो कुरान के सामने जो किताबें हैं से मुराद ये कुरान के पहले जो किताबें गुजर चुकी हैं, तो वो उनकी तस्दीक करती है। हाजा किताब, उनकी किताब की बात हो रही है यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं हो रही। वली तुंदरा, और ताके तुंदिरा, आप डरा दीजिए, ठीक है, इंजार डराने को कहते हैं, और लाम जो है ये ताकि, ये उसके लिए है कई, जिसका मतलब होता है ताके, ताके आप डरा दें, उम्मल कुरा, उम्मल कुरा मक्का मुकरमा का एक नाम है, उम्मल कुरा में रहने वाले लोग, यानी कि मक्का के शहर को आप डरा दें, बल्कि मक्का मुकरमा के वासियों को आप डराएं, वमन हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, हाउल, हाउल कहते हैं इर्द गिर्द के एरिया को, ठीक है, वैसे तो हाउल का मतलब होता है घूमना, या चेंज होना, जिस तरह से कोई चीज इन सर्कल घूमती रहती है ना, तो इधर से चेंज होती है, उधर से चेंज होती है, उधर से चेंज, फिर वो मुस्तकिल एक चक्कर में चलती रहती है। तो इस तरह से एक एक दायरा बन जाता है। तो मक्का मुकरमा के दायरे में, के अतराफ में जो लोग रहते हैं उनको भी आप डराइए, ठीक है। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यू जो है, ये तो लफ्जी तर्जुमा मत है ना, बैन है दही है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि किताब की बात हो रही है, तो इस वजह से हजरत ने तर्जुमा किया है कि जो उससे पहले नाजिल होने वाली किताबें हैं उनकी वो तस्दीक करती है, ताकि आप डराएं उम्मुल कुरा में रहने वाले लोगों को और जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको। वल्लदीना युमिनून बिल आखिरती, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, युमिनून बिल आखिरती यानी कि जो मरने के बाद वाली जिंदगी का जो है ना वो फिक्र करते हैं जो लोग, आप उन लोगों को डराइए। युमिनून बिही, वो इस पर ईमान लाते हैं। क्या मतलब? यानी इस कुरान के ऊपर कौन लोग ईमान लाते हैं? जो के आखरत पर ईमान लाते हैं। क्या मतलब भाई? जो कुरान पर ईमान लाता है फिर वो आखरत पर ईमान लाता है ना। हम तो यही, जब ईमान वाला मोमिन बनता है, कोई कलमा पढ़ लेता है और नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है, तो फिर वो जो है वो आखरत पर भी ईमान लेकर के आ जाता है। बल्कि नहीं, यहाँ पर जो लफ्ज ईमान इस्तेमाल किया गया ना, यहाँ पर जो लफ्ज ईमान को इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर इससे वो मुराद नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान लेकर के आते हैं वही कुरान के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं, बल्कि नहीं, जो आखरत पर ईमान लेकर आते। तो यहाँ पर ईमान का मतलब क्या कि आखरत की फिक्र करते हैं, जिनको आखरत की परेशानी लगी हुई होती है कि अभी मरने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो लोग फिर इसी इस किताब के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं। तो जब वो इस किताब पर ईमान लेकर के आ जाते हैं, तब फिर उनको आखरत की तफसील भी पता चल जाती है, तब उनको पता चल जाता है कि अच्छा, आखरत में कामयाबी का ये रास्ता है, ये तरीका है, ठीक है। लेकिन जिसको आखरत की बिल्कुल फिक्र ना हो, जो कि बस बस ये दुनिया किसी तरीके से मेरी जन्नत बन जाए, इस दुनिया में जो है ना वो मेरी मर्जियां पूरी हो जाएं, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, मुझे एंटरटेनमेंट मिल जाए, मुझे जो है वो मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम हुआ करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम ना हुआ करे इस दुनिया के अंदर, बस दुनिया मेरी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो जिसकी जिसकी फिक्र सारी की सारी इस दुनिया से मुताल्लिक होती है ना, वो फिर इस किताब के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आते, वो इस किताब के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आते, यानी वो इस किताब के ऊपर एतमाद नहीं करते, वो इस किताब को जो है वो कामयाबी का जरिया नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? इसलिए कि इस किताब का, बात समझाने की खातिर ये लफ्ज ये आज इस्तेमाल कर रहा है, इस किताब का मसला ये है, क्या कहते हैं ना उर्दू में, कहते हैं ना इसका मसला ये है, इसी वजह से तो मैं इसकी बात नहीं मानता, इसका ये मसला है, इस वजह से मैं इसकी बात नहीं मानता, इस किताब का मसला ये है कि ये किताब तो जजा और सजा जो है वो कहती है मरने के बाद होगा, ये किताब तो बताती है कि दुनिया के अंदर जो है ना ये जजा और सजा नहीं मिलने वाली है, तो मरने के बाद मिलेगी, और इस दुनिया में नहीं मिलेगी, वो तो जन्नत में मिलेगी। हमारी एक घर वाले बता रहे थे कि हमारी एक कजन के साथ उनका मुलाकात हुई, तो वो ऐसे कह रही थी जन्नत मिलेगी जन्नत, राइट, ऐसे बात कर रही थी कि, है ना, तो वो मजाक में कर रही थी या हकीकत में कर रही थी, अल्लाह आलम। लेकिन बस ये दीन तो बस यही है कि भाई जैसी तैसी गुजारा कर लो यहाँ पर, फिर इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में मिलेगा सबको, यानी दुनिया में जन्नत नहीं मिलने वाली है। तो जो शख्स जो है वो दुनिया में जन्नत चाहता हो, तो वो तो फिर एतमाद नहीं करेगा इस किताब के ऊपर, वो तो इस किताब को इस काबिल नहीं समझेगा कि हाँ इस किताब के मुताबिक मैंने जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। ये क्या मुसीबत है, दुनिया के अंदर तो मेरी मर्जी पूरी नहीं होती, दुनिया के अंदर तो ये नहीं होता वो नहीं होता, वो कहते हैं ना हम के लंबे लंबे ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो कैश दिखाओ, कैश, क्रेडिट पे बात नहीं करो कि हाँ तुम्हें बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, नहीं, मुझे तो अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए, मुझे कैश दिखाओ, आई वांट कैश, आई वांट किसको हम कहते हैं रियलिटी, ठीक है ना। ऐसा जो शख्स होता है ना जिसको कि यहीं पे चाहिए होता है सब कुछ, वो फिर ऊपर से बोलता, बेशक ऊपर से बोलता रहे कि मैं कुरान पे ईमान रखता हूँ, मैं नबी पे ईमान रखता हूँ, लेकिन वो नहीं रखता ईमान, असल में वो ईमान नहीं रखता, बोल रहा है लेकिन ईमान नहीं रखता असल में, ठीक है। इसी वजह से आज के दौर में जो लॉर्ड मुकाले, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म हो, फिर अमेरिकन इम्पीरियलिज्म हो, इनके जो पूरा के पूरे सिस्टम्स है ना, उन्होंने आज के अमूमी मुसलमान का मिजाज ये बना दिया है कि कंप्लीट फोकस ऑन द दुनिया, कंप्लीट फोकस ऑन द दुनिया, ठीक है। अब मुसलमान जो है वो दुनियादार होता है तो फिर तो जाहिर है दुनिया के ऊपर ही उसका पूरा फोकस होता है, लेकिन जब इनका तालीम याफ्ता, इनका तालीम याफ्ता मुसलमान जब दीनदार बन जाता है फिर भी उसका फोकस दुनिया ही होता है, वो दीन भी पे अमल कर रहा होता है ना, वो उसको दुनिया ही चाहिए बस, किसी तरीके से दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया जो है वो अच्छा, सहाबा के जमाने में जो है वो दौलत बहुत होती थी, देखो ये जो हजरत तलहा रतान और हजरत जुबैर रतान, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रतान, ये सारे के सारे अशरफ मुबशरा सहाबा, इतने इनमें से अक्सर जो है ये तो मिलियनियर होते थे, बिलियनियर होते थे, यार ये तो बड़ा अच्छा दीन है, इस दीन के जरिए से तो मिलियनर और बिलियनर बन जाते हैं। ये नहीं कि उन्होंने क्या कुर्बानियां दी थी, उन्होंने क्या किया जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया था, फिर अल्लाह ताला ने उनमें से चंद को जो है वो मिलियन और बिलियनर बना दिया था, वो कुर्बानियां तो नहीं देनी, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, लेकिन ये बड़ा अच्छा है यार, ये दीन के जरिए से तो पूरा दुनिया मिल जाती है, अच्छा दीन पे चल जाएंगे तो बच्चे हमारे फरमाबरदार बन जाएंगे, किसके फरमाबरदार बन जाएंगे, अल्लाह और रसूल के नहीं, हमारे फरमाबरदार बन जाएंगे, ये तो बड़ा अच्छा दीन है यार, ये तो बड़ा अच्छा दिन है यार कि भाई बच्चा जो है वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएगा, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छा दीनदार बन जाएंगे तो बेगम साहिबा जो है ना वो फिर कम पे राजी हो जाएंगी, कम पे राजी हो जाए करेंगी, हर वक्त जो है वो उनको शॉपिंग की डिमांड्स नहीं करती रहेंगी, अच्छा है इनको जरा मदरसे में दाखिल करवा दो, इनको जरा आलमा शालमा बनवा दो, ठीक है ना, आलमा बन जाएंगी, फिर जो है वो शॉपिंग की डिमांड्स नहीं किया करेंगी, उसके बाद फिर मेरा जो है वो अच्छा जो है वो बचत भी हो जाएगी और मैं अपनी फिर पैसे, अपने पैसे को जो अपनी वीडियो गेम्स के ऊपर फिर मैं खर्च कर सकूंगा, अपने पैसे को फिर मैं अपनी जो है वो तफरी के लिए खर्च कर सकूंगा, बेगम साहिबा की शॉपिंग बच जाएगी, ये तो बड़ा अच्छा दिन है यार, अच्छा है इनको जरा आप बुरका शुरका कर लेंगी तो हर वक्त के नए नए कपड़े इनको नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि बुरका बुरके से जो है वैसे ही कपड़े छुप जाते हैं, तो यानी कंपेयर टू ए दुनियादार औरत इनकी डिमांड्स कम हो जाएंगी, ठीक है ना। और उसी तरीके से थोड़ा सा आप इसको और ब्रॉडन कर लें तो दुनिया के अंदर जो है ना वो मुसलमान गालिब आ जाएंगे और मुसलमान जो है वो हुकूमत बन जाएगी, और उसमें जो है वो मुसलमान हुकूमत में क्या होगा, मुसलमान हुकूमत में ये होगा कि मैं जो करना चाहूंगा ना मुझे उसकी आजादी होगी, और जो है वो मुझे चोर डाकू का खौफ नहीं हो नहीं रहेगा, ठीक है, तो मेरी जितनी कमाई होगी चाहे हलाल की कमाई हो चाहे हराम की कमाई हो, पीपल विल स्टॉप बॉदरिंग मी, क्योंकि इस्लामी इस्लामी हुकूमत आ जाएगी, और इस्लामी हुकूमत के अंदर जो है ना वो चोर डाकू जो है वो उनको तो सजा दे दी जाती है, यानी जो खुल करके चोर डाकू होते हैं उनको सजा दे दी जाती है, और जो छुप करके चोर डाकू होते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती इस्लामी हुकूमत के अंदर, जैसे हमारे जैसे चोर डाकू जो होते हैं तो करप्शन के जरिए से जो है वो पैसा बनाते हैं उनको तो सजा नहीं मिलती, तो बाकी चोर डाकुओं जो है उनको फांसी दे दे करके जो है वो अमन अमान हो जाएगा, फिर हम जो मर्जी आएंगे करेंगे इस्लामी हुकूमत के अंदर, इस वजह से इस्लाम इस्लाम चाहिए, तो अब जो है वो इस्लामी हुकूमत और इस्लाम, और इस्लाम के नाम पे रियासत बनाना और इस्लाम के नाम के ऊपर जो है वो सियासत वगैरह, ये अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, दुनिया की खातिर, दुनिया अच्छी हो जाए किसी तरीके से। कुरान तो कहता है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती, वो जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो नफ्स मुतमइन्ना बनाएगा ना अपने दुनिया के अंदर, तो तो उसको मरने के वक्त कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। दुनिया में तो कोई जन्नत नहीं मिलने वाली है, दुनिया में तो कोई जन्नत नहीं बनने वाली है, दुनिया में तो फसाद रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है वो ईमान वालों के दरमियान जो है वो फसाद वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत खत्म भी हो सकता है, लेकिन दुनिया में मर्जी नहीं चलने वाली है। तो ऐसा जो लोग बंदा होता है ना, फिर वो नहीं कुरान के ऊपर फिर वो मुतमईन नहीं हो सकता, वो मुतमईन कभी भी नहीं हो सकता कुरान के ऊपर। फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरत युमिनून भी, और जिनको यकीन है आखिरत का, यानी मरने के बाद आप मिट्टी में मिलके हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि मरने के बाद एक जिंदगी है, ठीक है, तो उस जिंदगी की फिक्र करनी है, तो फिर वो लोग इसके ऊपर, इस कुरान के ऊपर ईमान लेकर के आते हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफिदून, और वो है कि अपनी नमाज से खबरदार, अपनी नमाज की फिक्र करने वाले लोग हैं। ऐसे तो हमारे ईमान का लेवल तो बहुत कम है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे ईमान का लेवल बहुत कम है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हमारे ईमान के लेवल को अगर आपने बड़ा मान लिया तो फिर इसके ऊपर मेहनत कैसे करेंगे? पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि हमारे ईमान का लेवल बहुत कम है। हमें आखिरत के लिए नेकी करनी, हमें आखिरत के लिए जो है वो अल्लाह ताला को राजी करना है, दुनिया के लिए नहीं करना। दुनिया में मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, और कौन ज्यादा जालिम है जो कि इफ्तरा अलल्लाह कज़बन, जो कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है, कज़बन झूठ, यानी इफ्तरा करने का मतलब कोई बात किसी की तरफ आपने बना दी, हालांकि वो झूठ थी, कज़बन झूठ की हालत में आपने इफ्तरा कर दिया। औ काला, और वो कहता है ऊहिया इलैया, वही नाजिल हुई मेरी तरफ, वलम यूहा इलैहि शयउन, हालांकि उसकी तरफ, हालांकि हाल ये था कि उसकी तरफ कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, कोई भी चीज उसके ऊपर वही नहीं आई थी, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। वमन काला, और जिसने कहा सअन्ज़िलु मिस्ला मा अन्ज़लल्लाह, ये अनकरीब मैं भी उतारता हूं उसके मिसल जो अल्लाह ने उतारा, उसके जैसा मैं भी नाजिल कर देता हूं। जैसे आज के मॉडर्न एथियस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि जब कुरान की कोई ऐसी दलील पेश की जाती है ना कि देखो कुरान मजीद के अंदर जो है वो ये बात है, और ये जो है ये कैसे जो है वो कोई इंसान ये बात कर सकता है, ये तो इंसानों को बनाने वाला ही ये बात कर सकता है, तो आगे से जवाब देते हैं नहीं, ये बात तो कोई भी कर सकता है, ये बात तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्या मतलब कोई भी कर सकता है भाई, कैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन कह देते हैं इस तरह की बात कि ये बात तो कोई भी कर सकता है, जहालत की वजह से कहते हैं, जिद की वजह से कहते हैं। तो ये बंदा जो है ना, ये भी ऐसी बातें करता है कि ये तो मैं भी नाजिल कर दूं यार, इस तरह की कोई चीज तो मैं भी नाजिल कर दूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी यही जो हमारा इस वक्त का निजाम चल रहा है ना, उसके अंदर भी यही इसी किस्म की सारे के सारे मसले हैं जो कि उस वक्त के मसले थे। ऐसी बातें हम भी आज कर लेते हैं नफ्स परस्ती की वजह से। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, हमें कैसा पता, कैसे पता चलेगा कि हम काफिर नहीं हैं? क्योंकि इल्म ना होने की वजह से शायद कोई ऐसी बात कर दें जो हो कर दें जिससे ईमान से निकल गए हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हम काफिर नहीं हैं? क्योंकि इल्म ना होने की वजह से शायद ऐसी कोई बात कर दें जिससे ईमान से निकल गए हो। ठीक है, हमें ऐसा पता चलेगा कि जब हम अल्लाह ताला के इस हुक्म के ऊपर अमल करेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सादिकीन के साथ तुम चिपक के रहो, नत्थी हो जाओ उनसे, जुड़ जाओ उनसे। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं ना, यानी अपने मशायख के साथ हम जुड़ जाते हैं ना, तो फिर हमारे ईमान की तजदीद भी होती रहती है, हर बयान के बाद ईमान की तजदीद करवा रहे होते हैं वो, आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही। ठीक है, ईमान की तजदीद भी हो रही होती है, और वो हमें ऐसी बातें खोल खोल करके बयान भी कर रहे होते हैं कि जिनकी रोशनी में हम अपने आप को चेक कर सकें कि वाकई हमारा ईमान है भी कि हम काफिर हो चुके हैं। ठीक है। ये अल्लाह का हुक्म है कूनू मा सादिकीन, ठीक है। तो इस हुक्म का कि जब हम खिलाफ वर्जी करते हैं, जब हम इस हुक्म को जो है वो बिल्कुल यानी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर हम काफिर भी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम काफिर हो गए। ठीक है, कोई ना कोई बात उल्टी सीधे हम कहते रहते हैं, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं होता, कोई हमें बताने वाला नहीं होता, क्योंकि हमने किसी को घास ही नहीं डाली होती कि भैया आप हमें बता दिएगा कि अगर हमने कोई उल्टी बात कर दी तो आप हमारी इसलाह कर दिएगा, हमने किसी को इस काबिल नहीं समझा होता। ये सजा होती है फिर कि हम ईमान से निकल जाते हैं। आजकल यही चल रहा है, बस क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं कि उन्होंने एक मैसेज लिखा है उसको देख करके कि माजी में भी मुनाफिक लोग इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे कि जिस तरफ गलबा होगा उस तरफ हो जाएंगे, यही मुनाफिकत की अलामत भी हुई कि दीन भी दुनिया की खातिर। हाँ, माजी में भी ऐसा होता कि होता था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने के लिए ना वो ठहर के इंतजार कर रहे होते थे कि अगर ये दुनिया में कामयाब हो गए तब हम जो है ना इनको रसूल मान लेंगे। तो ये तो फिर दुनिया की खातिर दीन हुआ ना फिर, तो आज भी यही है कि दुनिया की खातिर दीन। तो बहरहाल, तो क्या कहा मैंने, हाँ ये बात ये हो रही थी कि ये जो अल्लाह का हुक्म है ना कूनू मा सादिकीन, इसका मतलब क्या है कि तुम उनके साथ बिल्कुल चिपक जाओ, फिजिकली नहीं चिपक जाओ लेकिन उनका बिल्कुल जुड़ जाओ उनके साथ ना, उनके साथ फोकस्ड हो जाओ, उनकी बात जो है वो तुम सुनना शुरू कर दो और गौर करना शुरू कर दो और जो है वो इस निजाम का हिस्सा बन जाओ। ये सब मतलब बनता है कूनू मा सादिकीन का, ठीक है। आज बहुत सारे लोग दीनदार भी हो गए और बहुत सारे लोग मशायख को सुनना भी शुरू हो गए, ठीक है, मशायख को सुनना भी शुरू हो गए, लेकिन कैसे सुनते हैं? कूनू मा सादिकीन के हुक्म पर अल्लाह के अमल करते हुए नहीं सुनते, बल्कि कैसे सुनते हैं जल्दी से बताएं? मशाय को सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? अल्लाह का हुक्म तो है कूनू मा सादिकीन, उनके साथ जुड़ जाओ। खाली ये भी नहीं कहा कि तुम उनको सुनो, बल्कि एक कहा तुम उनके साथ जुड़ जाओ, लेकिन हम नहीं जुड़ते हैं। तो हम कैसे सुनते हैं फिर उनको? सोशल मीडिया पे उनकी बात सुनते हैं। बिल्कुल सही फरमाया, सोशल मीडिया पे उनकी बात सुनते हैं, यानी उनके साथ हमारा जो ताल्लुक है ना वो है मीडिया बेस्ड, ठीक है, जुड़ते नहीं है, निजाम का हिस्सा नहीं बनते, फोकस नहीं करते, उनके करीब नहीं होते, ठीक है, बल्कि सोशल मीडिया पे कभी किसी की तकरीर सुन रहे हैं, कभी किसी की तकरीर सुन रहे हैं, कभी किसी की तकरीर सुन रहे हैं। आजकल ये बात बहुत खुल के सामने आ गई है कि जिन्होंने अपना ताल्लुक मशायख के साथ इस तरह से बनाया हुआ है ना सोशल मीडिया बेस्ड, इधर से उनकी तकरीर सुन ली, उधर से उनकी इधर फेसबुक के ऊपर किसी शेख की जो है वो बयान सुन लिया, और क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर किसी जो है वो बड़े मुफ्ती साहब का और मौलवी साहब का बयान सुन लिया, वो इस वक्त गुमराही के अंदर धक्के खा रहे हैं, वो गुमराही के अंदर धक्के खा रहे हैं, दे आर बीइंग पुश्ड इनटू गुमराही। कैसे? इन मशायख के बयान सुन सुन करके वो गुमराही के अंदर पुश हो रहे हैं। हालांकि कोई कहे, जाहिर है इसके ऊपर आप सभी बोलेंगे क्यों भाई, हम तो अहले हक का बयान सुन रहे थे, हम तो फलाने बड़े जो थे आप भी उनको बड़ा कहते हैं, हम तो उनका बयान सुन रहे थे, गुमराही में कैसे हम पुश हो जाएंगे उनका बयान सुन करके? उसका जवाब यह है कि अल्लाह का हुक्म था कुनु मा सादिकीन, और तुमने जो है वो मामला किया अल्लाह के हुक्म से हट करके, खिलाफ जा करके, कि तुम उनसे नहीं जुड़े बल्कि तुम उनको जो सुनते हो तो सिर्फ मीडिया के ऊपर सुनते हो। अब मीडिया के ऊपर उनसे बयान या तो दिलवाए जा रहे हैं या किसी हिकमत की वजह से, जो भी मजबूरियां हैं उसकी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिन बयानों को सुन करके बंदे का ईमान ही खत्म हो जाए। बात समझ में नहीं आ रही, अब समझने की कोशिश करें, इल्म हासिल करें और जुड़े अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करें। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं है। उठाएं कुरान मजीद और उठा करके उसके अंदर देखेंगे कि अल्लाह का हुक्म कहां पर ये वाला मौजूद। कूनू मा सादिकीन, नक्की हो जाओ उनके, ये अल्लाह का हुक्म है। हमने तमाशा बना रखा है अल्लाह के हुक्मों को, समझते हैं कि नहीं अल्लाह का हुक्म तोड़ करके भी हम कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह का हुक्म तोड़ करके भी जो है वो हम हिदायत पे बाकी रहेंगे। हरगिज नहीं, कैसे हो सकता है ये वाला काम, ठीक है। तो आजकल मीडिया के ऊपर जो सुने चले हैं ना, वो किसी आलिम को सुन लिया, कभी किसी मुफ्ती को सुन लिया, कभी किसी शेख को सुन लिया, और उससे जो है वो फिर अपने ईमान के बारे में फैसले कर रहे हैं बैठ करके, ये सजा मिल रही है ऐसे लोगों को अल्लाह का हुक्म तोड़ने की वजह से, अल्लाह का हुक्म तोड़ने के ऊपर ये सजा मिल रही है। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही है, क्योंकि हुक्म किसका तोड़ा है? अल्लाह का तोड़ा है, शेख साहब का हुक्म नहीं तोड़ा। शेख साहब तो अल्लाह का हुक्म जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना, कहीं तो अल्लाह का तोड़ा है। ठीक है, और वैसे भी चिपका तो किसी एक ही के साथ जाता है, जो वो तो फिर यकसुई वाली बात है, वो अकल परस्ती के खिलाफ, कि भाई भाई एक ही के साथ आपको यकसू होना है, तो एक के साथ चिपके हैं। ठीक है, बहरहाल एक के साथ चिपके हैं ना चिपके हैं, भाई एक ही के साथ चिपका जा भी सकता है, आप कितना लोगों के साथ चिपकेंगे, इधर भी चिपके हुए, उधर भी चिपके हुए, उन शेख साहब के साथ भी चिपके हुए, इन मुफ्ती साहब के साथ भी चिपके हुए, उनके साथ भी चिपके हुए, ये कैसे हो, ये हो ही नहीं सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो कूनू मा सादिकीन के ऊपर जब अमल करेंगे ना, खुद ही यकसुई पैदा हो जाएगी, खुद ही यकसुई पैदा हो जाएगी, क्योंकि यकसुई के बगैर कूनू के हुक्म पर अमल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
Recording stopped.